संयुक्त राष्ट्र रेडियो के साप्ताहिक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सचिन गौड़। 3 दिसंबर 2021 के इस अंक में सुनिए, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव से गहराई चिंता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देशों से कहा, घबराहट से बचने और स्वास्थ्य प्रणालियों को पुख्ता बनाने का समय। विश्व भर में 1 अरब विकलांग जन के लिए कोविड-19 महामारी ने बढ़ाई मुश्किलें। होगी एक खास बातचीत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली विकलांग महिला अरुणिमा सिन्हा के साथ। भारत में कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी पर यूएन मानवाधिकार कार्यालय ने जताई चिंता। और इंटरनेट की उपलब्धता में आए उछाल के बावजूद निर्धन जन इन सेवाओं तक पहुँच से वंचित। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। दुनिया भर में वैज्ञानिक कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने में जुटे हैं। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को सभी देशों से घबराहट से बचने का आग्रह किया है। संगठन ने साथ ही आगाह किया है कि देशों के लिए अपनी स्वास्थ्य प्रणालियों को मुस्तैद बनाना बेहतर होगा। इससे पहले यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने भी बुधवार को जिनीवा में पत्रकारों को जानकारी देते हुए नए वेरियंट के प्रति आगाह किया था।
The emergence of the Omicron variant has understandably captured global attention. At least 23 countries from 5 of 6 WHO regions have now reported cases of Omicron, and we expect that number to grow.
Omicron variant ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जिसे समझा जा सकता है। संगठन के 6 में से 5 क्षेत्रों में कम से कम 23 देशों में इसके मामले सामने आए हैं और ये संख्या बढ़ने की संभावना है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने दोहराया है कि अंधाधुंध यात्रा प्रतिबंध लगाए जाने से बचा जाना होगा। जिन देशों में स्वास्थ्य प्रणालियां संक्रमण में आए उछाल से जूझ रही हैं, वहां स्थिति की समीक्षा की जानी होगी। ये जानने में अभी 2 और सप्ताह का समय लग सकता है कि ये वेरिएंट कितना संक्रमण फैलाने वाला और कितना खतरनाक है। संगठन के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट का खतरा भी सबसे प्रमुख है और कोरोना वायरस का ये रूप दुनिया भर के 90% हिस्से में फैला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने शुक्रवार 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग जन दिवस के अवसर पर जारी अपने संदेश में वैश्विक महामारी पर जवाबी कार्रवाई और उससे उबरने की प्रक्रिया में विकलांग जन का ध्यान रखे जाने का आग्रह किया है। यूएन प्रमुख ने सचेत किया है कि विकलांग जन कोविड-19 महामारी से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों में है। यूएन के एक अनुमान के अनुसार विश्व भर में करीब 1 अरब लोग विकलांगता की अवस्था में रहते हैं, जो कि विश्व आबादी का 15% है। इनमें से 80% विकलांग जन विकासशील देशों में रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग जन दिवस के अवसर पर यूएन न्यूज ने विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने वाली विकलांग महिला अरुणिमा सिन्हा से बात की। उनका कहना है कि विकलांग जन को दया की नहीं बल्कि समर्थन की जरूरत है। उन्होंने यूएन न्यूज की प्रतिष्ठा जैन के साथ एक इंटरव्यू में अपने जीवन की एक बड़ी चुनौती के बारे में बताया।
एक्चुअली 2011 में एक ट्रेन एक्सीडेंट में मेरा पैर कट गया था। चलती ट्रेन से कुछ बदमाशों ने उठाकर मुझे बाहर फेंक दिया था और ये उत्तर प्रदेश में एक बरेली डिस्ट्रिक्ट है, उसके आसपास में हुआ था। तो मैंने फिर हॉस्पिटल में मैं काफी दिन तक एडमिट रही, करीब 4-5 महीने। फिर वॉलीबॉल तो मैं खेल नहीं सकती थी, फिर मैंने हॉस्पिटल के बेड से ही एक न्यूज़पेपर था और उस न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, तो उसमें मेरे ही बारे में बहुत सारी चीजें लिखी थी। कंट्रोवर्सी भी थी उसमें कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, टीटी आने पर अरुणिमा ट्रेन से कूद गई। तो फिर मैंने वहीं से डिसाइड किया कि लाइफ का सबसे टफ गेम लेना है, किसी और को प्रूफ नहीं करना, खुद को प्रूफ करना है। फिर तय किया हॉस्पिटल के बेड से लाइफ का सबसे टफ गेम लिया और फिर उसपे उसका जो चैलेंज था एक्सेप्ट किया और करना शुरू किया फिर एवरेस्ट।
अगर आपको अपने जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण सबक बताना हो तो आप अपने अनुभवों से जो आपने सीखा है वो कौन सा सबक शेयर करना चाहेंगी?
जिंदगी का हर चैलेंज एक सबक सिखाता है और हर मोड़ पे, बस वो कहते हैं ना, चैलेंज बदल जाते हैं, उसका रूप बदल जाता है। मैंने एवरेस्ट में अगर एक्सीडेंट की बात करें, अगर एक्सीडेंट से मैंने सिर्फ ये सीखा है कि जिंदगी आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। आप अगर परिस्थितियों के दास आप बनते हैं, सिचुएशंस के आप दास बनते हैं, तो शायद आप वहीं रह जाए। जैसे परिस्थितियां ने लिख दिया था कि अरुणिमा व्हील चेयर पे रहो या फिर बैसाखी या फिर शायद जिंदगी भर उठ ना पाए बेड से, ये सारी चीजें थी। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, मोड़ते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित, क्योंकि जब जब आपके जीवन में परेशानियां आई थी तो उसी समय आपके जीवन में कुछ अच्छी चीजें भी आई थी, लेकिन आप सिर्फ नेगेटिव चीजों पे ध्यान देते, अच्छी चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो मैंने बस वो थोड़ी अच्छी चीजों पे भी ध्यान दिया कि ठीक है मेरा पैर कटा है, लेकिन उसके बाद क्या, उस पे ध्यान दिया और उठ के खड़ा होने की सोचा मैंने।
3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र काफी प्रयास कर रहा है इस दिशा में नए नए कदम उठाने का। आप हमारे श्रोताओं को क्या सुझाव देना चाहेंगी ताकि विकलांगों के हालात बदले?
देखिए, सबसे पहली बात कि हम उनको क्यों माने कि वो दिव्यांग है, उनको आप अपने बराबर देखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उनको अपने बराबर समझिए और उनके ऊपर दया दिखाने की जरूरत नहीं, बस उनको एक सपोर्ट करने की जरूरत है।
माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली विकलांग महिला अरुणिमा सिन्हा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। ज्यादा जानकारी के साथ यूएन न्यूज हिंदी के प्रमुख महबूब खान।
बताया गया है कि भारत प्रशासित कश्मीर में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के लिए बनाए गए कानून UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया है। पिछले एक सप्ताह से हिरासत में रखे गए खुर्रम परवेज पर आतंकवाद संबंधी अपराधों के आरोप निर्धारित किए गए हैं। UN मानवाधिकार कार्यालय OHCHR के प्रवक्ता रूपर्ट कॉलविल ने बुधवार को जारी अपनी एक टिप्पणी में कहा कि इन आरोपों के तथ्यात्मक आधार के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि खुर्रम परवेज को गुमशुदा लोगों के परिवारों के लिए एक अथक पैरोकार के रूप में जाना जाता है और उन्हें मानवाधिकारों से जुड़े काम के सिलसिले में पहले भी निशाना बनाया गया है। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने स्थानीय प्रशासन से खुर्रम परवेज की अभिव्यक्ति की आज़ादी और निजी स्वतंत्रता के अधिकार की पूर्ण रूप से रक्षा किए जाने और उन्हें रिहा करने के लिए एहतियाती कदम उठाए जाने का आग्रह किया है। UN एजेंसी का कहना है कि UAPA कानून के तहत प्रशासन को अस्पष्ट आधार पर व्यक्तियों व संगठनों को आतंकवादी के रूप में चिन्हित किए जाने का अधिकार दिया गया है। इससे लोगों को मुकदमा चलाए जाने से पहले लंबे समय तक हिरासत में रखने और जमानत की प्रक्रिया को बेहद मुश्किल बनाने का रास्ता खुल जाता है। साथ ही उचित प्रक्रिया का पालन, मुकदमे की निष्पक्ष कार्यवाही और दोष साबित होने से पहले किसी को निर्दोष माने जाने का अधिकार भी प्रभावित होता है।
संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में इस वर्ष इंटरनेट का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर लगभग 4.90 अरब हो गई है, मगर अब भी लगभग 2.90 अरब लोग ऐसे हैं जिन्हें इंटरनेट इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी सुविधा नहीं मिली है, यानी विश्व आबादी का 37%। ज्यादा विवरण के साथ अंशु शर्मा।
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंटरनेट की उपलब्धता और उसके प्रयोग में ये बढ़त COVID-19 महामारी के कारण भी दर्ज की गई है। संगठन का कहना है कि वैश्विक विकास के नजरिए से ये अच्छी बात है, मगर इंटरनेट की उपलब्धता और उसका प्रयोग अब भी बहुत असमान है, क्योंकि करोड़ों लोगों को ऑनलाइन सुविधा का इस्तेमाल करने का मौका कभी कभी मिलता है। वर्ष 2019 के बाद से लगभग 78 करोड़ 20 लाख लोगों ने ऑनलाइन सुविधा का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो कि तालाबंदियों, स्कूल बंद होने और दूरस्थ स्थानों से कामकाज व बैंक सुविधाओं के इस्तेमाल के कारण ऑनलाइन मौजूदगी में 17% की वृद्धि थी। ITU ने कहा है कि निर्धनता, निरक्षरता, बिजली की कम उपलब्धता और डिजिटल कौशल के अभाव के कारण डिजिटल संसाधनों से वंचित समुदायों के रास्ते में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं।
संयुक्त राष्ट्र और उसके साझेदार संगठनों ने विश्व भर में बढ़ती मानवीय राहत जरूरतों के मद्देनजर अपनी एक वार्षिक समीक्षा योजना पेश की है, जिसके मुताबिक अगले साल दुनिया भर में 27 करोड़ से अधिक लोगों को आपात सहायता और संरक्षण की जरूरत होगी। वर्ष 2022 के लिए एक अनुमान के अनुसार 18 करोड़ से अधिक सबसे अधिक जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने के लिए $41 अरब के बराबर धन की आवश्यकता होगी। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।